एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम गोता लगा रहे हैं अंग्रेजी साहित्य के एक ऐसे तूफानी उपन्यास में जो जुनून, बदले और सामाजिक जकड़नों की एक बहुत ही गहरी अंधेरी कहानी है, एमिली ब्रॉन्टे की कालजयी रचना वुदरिंग हाइट्स।
हाँ बिल्कुल, और एमिली ब्रॉन्टे खुद मतलब एक पहेली ही थी, है ना। यॉर्कशायर के वो हावर्थ पासनेज का एकांत, वो जंगली वीरान मूरलैंड्स, लगता है जैसे वो सारा माहौल उनके लेखन में उतर आया।
सही कहा, अपनी बहनों शॉलेट और एन जो खुद भी जानी मानी लेखिका थीं, उनसे बिल्कुल अलग आवाज थी एमिली की, ज्यादा आदिम, ज्यादा शक्तिशाली।
और जब 1847 में ये किताब आई एलिस बेल के नाम से, तो सोचिए जरा विक्टोरियन इंग्लैंड में क्या हलचल मची होगी।
हाँ, मतलब उस दौर के हिसाब से तो ये बहुत ही चौंकाने वाली किताब थी। इसमें जो कच्ची भावनाएं हैं, जो नैतिक अस्पष्टता है, कहानी कहने का जो जटिल तरीका है, वो सब बिल्कुल अलग था।
बिल्कुल, शुरुआती रिव्यूज तो बहुत खराब थे। किसी ने कहा अजीब है, किसी ने क्रूर, यहां तक कि अनैतिक भी। लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये है क्या।
लेकिन वक्त के साथ इसकी कदर पहचानी गई। आज ये अंग्रेजी के सबसे महान उपन्यासों में से एक मानी जाती है।
हाँ, कहानी दो पीढ़ियों में फैली है। दो परिवार हैं, अर्नशॉ और लिंटन, और दो जगह हैं, वुदरिंग हाइट्स,
जो एकदम जंगली तूफानी जुनून का प्रतीक है।
बिल्कुल, और दूसरी तरफ है थ्रसक्रॉस ग्रेंज, जो सभ्यता, व्यवस्था और शायद थोड़े दिखावे का भी प्रतीक है।
और इन सब के बीच कहानी के केंद्र में है दो लोग, कैथरीन अर्नशॉ और हीथक्लिफ, वो रहस्यमयी नलका जिसे कैथरीन के पिता कहीं से उठाकर ले आते हैं।
और उनका रिश्ता वो कोई आम प्रेम कहानी नहीं है, वो तो जैसे आत्माओं का टकराव है। एक ऐसा जुड़ाव जो समाज की दीवारों से टकराता है और फिर बदले की ऐसी आग लगाता है जो पीढ़ियों तक सुलगती रहती है।
तो चलिए आज इसी जटिल और प्रभावशाली कहानी की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं, समझते हैं किरदारों के सफर को, उनके अंदर के द्वंद्वों को।
कहानी की शुरुआत थोड़ी अलग तरह से होती है। 1801 का साल है, मिस्टर लॉकवुड मैम के एक सज्जन किराए पर रहने आते हैं थ्रसक्रॉस ग्रेंज में।
हाँ, और वो अपने मकान मालिक मिस्टर हीथक्लिफ से मिलने जाते हैं वुथरिंग हाइट्स। बर्फीला तूफान चल रहा होता है
और वुथरिंग हाइट्स पहुंचकर उन्हें एहसास होता है कि ये कोई आम जगह नहीं है, माहौल बहुत रूखा रहस्यमयी है। हीथक्लिफ का बर्ताव तो खैर अशिष्ट है ही, घर के बाकी लोग भी अजीब है।
और फिर वो रात में डरावना सपना, कैथरीन के भूत वाला, वो लॉकवुड के लिए एक बड़ा शौक होता है।
हाँ बिल्कुल, उसी अनुभव के बाद और उस घर के रहस्य को जानने की इच्छा से लॉकवुड अपनी हाउसकीपर नेली डीन से पूछताछ करते हैं, और यहीं से नेली, जो इस कहानी की मुख्य गवाह और सूत्रधार है, हमें अतीत में ले जाती हैं, लगभग 30 साल पीछे।
तो नेली की कहानी कहाँ से शुरू होती है?
नेली बताती हैं कि कैसे वुथरिंग हाइट्स के पुराने मालिक मिस्टर अर्नशॉ एक बार लिवरपूल से एक अनाथ सांवले रंग के लड़के को साथ ले आए थे, नाम रखा हीथक्लिफ।
और घर में उसका स्वागत कैसे हुआ?
मिला जुला, मिस्टर अर्नशॉ के बेटे हिंडले ने तो उसे पहली नज़र से ही नापसंद किया, जाहिर है ईर्ष्या थी, लेकिन उनकी बेटी कैथरीन, उसके और हीथक्लिफ के बीच तुरंत एक गहरा अजीब सा रिश्ता बन गया।
कैसा रिश्ता था वो? दोस्ती, बचपन का प्यार?
उससे कहीं ज्यादा। वो दोनों बच्चे जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू थे। समाज के नियमों से परे उन जंगली मूरलैंड्स पर आज़ादी से घूमते थे, उनकी आत्माएं जैसे जुड़ गई थीं। वो मूरलैंड्स ही उनकी दुनिया थे, उनकी पहचान।
लेकिन हिंडले की नफरत वो तो शुरू से ही थी।
हाँ, और जैसे ही मिस्टर अर्नशॉ गुजरे, हिंडले का असली रूप सामने आ गया। उसने हीथक्लिफ पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए, उसे नौकरों जैसा बना दिया, उसकी पढ़ाई रोक दी, उसे नीचा दिखाया हर तरह से।
यहाँ वो सामाजिक वर्ग और अन्याय वाली बात साफ दिखती है ना। हिंडले का बर्ताव सिर्फ जलन नहीं थी, वो उस वक्त की सामाजिक ऊंच नीच का भी नतीजा था।
बिल्कुल, और ये अपमान, ये जुल्म, इसने हीथक्लिफ के अंदर बदले की वो आग भरी जो बाद में सबको जला डालने वाली थी।
कहानी में बड़ा मोड़ कब आता है?
जब कैथरीन और हीथक्लिफ एक दिन छिपकर थ्रसक्रॉस ग्रेंज जाते हैं लिंटन परिवार को देखने। वहां उन पर कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं और कैथरीन जख्मी हो जाती है।
अच्छा,
उसे कई हफ्ते लिंटन परिवार के साथ उनके घर रहना पड़ता है, एडगर और इसाबेला लिंटन। वो सभ्य, पढ़े लिखे अमीर लोग हैं, उनके रहन सहन, तौर तरीकों का कैथरीन पर असर पड़ता है।
तो जब वो वापस वुथरिंग हाइट्स आती तो बदल चुकी होती है।
हाँ काफी, वो अब एक सजी सवरी शिष्ट युवती है। उसका वो पुराना जंगलीपन कहीं दब सा गया है, और ये बदलाव ये हीथक्लिफ और उसके बीच एक दूरी पैदा कर देता है।
वो अब समाज, अपनी हैसियत, इन चीजों के बारे में सोचने लगी है।
बिल्कुल। और फिर आता है वो फैसला, वो पल जो सबकी जिंदगी बदल देता है। कैथरीन नेली डीन को बताती है कि उसने एडगर लिंटन से शादी करने का फैसला किया है,
लेकिन उसका असली प्यार तो हीथक्लिफ है।
हाँ, वो खुद ये मानती है। वो नेली से कहती है कि एडगर के लिए उसका प्यार तो पत्तों जैसा है, वक्त के साथ बदल जाएगा, लेकिन हीथक्लिफ के लिए जो प्यार है वो नीचे की शाश्वत चट्टानों जैसा है, वो कभी नहीं बदलेगा।
और वो मशहूर लाइन, मैं हीथक्लिफ हूँ।
हाँ, आई एम हीथक्लिफ। और ये भी कि हमारी आत्माएं जिस चीज से बनी हैं उसकी और मेरी एक जैसी हैं। ये पंक्तियां उनके रिश्ते की असाधारण गहराई दिखाती हैं।
पर इसी बातचीत में एक भयानक गलतफहमी हो जाती है ना?
हाँ, क्योंकि हीथक्लिफ दरवाजे के पीछे सब सुन रहा होता है, मगर वो पूरी बात नहीं सुन पाता। वो सिर्फ इतना सुनता है कि कैथरीन कह रही है कि हीथक्लिफ से शादी करना उसके लिए अपमानजनक होगा। वो ये नहीं सुन पाता कि कैथरीन आगे कह रही थी कि वो एडगर से इसलिए शादी कर रही है ताकि वो हीथक्लिफ की मदद कर सके, उसे ऊपर उठा सके। अधूरा सच सुनकर हीथक्लिफ का दिल टूट जाता है और वो उसी रात वदरिंग हाइट्स छोड़कर चला जाता है।
और कैथरीन का ये चुनाव, ये प्रकृति, हीथक्लिफ और सभ्यता, एडगर के बीच का संघर्ष दिखाता है। सामाजिक दबाव और महत्वाकांक्षा कैसे वो सच्चे जुनून पर हावी हो सकते हैं, और इसका नतीजा कितना विनाशकारी होता है।
बिल्कुल, इसी फैसले ने उस भयानक बदले की कहानी की शुरुआत की जो आने वाली थी।
तो हीथक्लिफ चला जाता है, कितने वक्त के लिए?
3 साल। 3 साल बाद वो लौटता है, मगर अब वो पुराना गवार अपमानित हीथक्लिफ नहीं है।
कैसा है वो अब?
वो अमीर है, दिखने में संभ्रांत है, रहस्यमयी है, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी नफरत की आग जल रही है, और उसका इरादा बिल्कुल साफ है, बदला।
और वो बदला लेना शुरू करता है बहुत ठंडे दिमाग से, है ना?
हाँ, बहुत योजनाबद्ध तरीके से, एक एक करके। सबसे पहले निशाना बनता है हिंडले,
जो अब तक काफी बर्बाद हो चुका होगा।
हाँ, शराब और जुए ने उसे खोखला कर दिया है। हीथक्लिफ उसे और कर्ज में डुबोता है, उसकी जमीन हड़पता है, और आखिरकार वुथरिंग हाइट्स का मालिक बन बैठता है।
और एडगर लिंटन उससे बदला कैसे लेता है?
उसकी बहन इसबेला के जरिए। इसबेला थोड़ी रोमानी सोच की भोली लड़की है। वो हीथक्लिफ के बाहरी रूप और रहस्य से आकर्षित हो जाती है। हीथक्लिफ उससे शादी कर लेता है,
सिर्फ बदला लेने के लिए।
हाँ, सिर्फ एडगर को और इसबेला को तड़पाने के लिए। शादी के बाद वो इसबेला पर भयानक जुल्म करता है, शारीरिक और मानसिक रूप से उसे तोड़ देता है।
ये देखना बड़ा मुश्किल है कि जो कभी खुद शिकार था वो अब कितना बड़ा शिकारी बन गया है। क्या लगता है, ये सिर्फ हालात का नतीजा है या उसके अंदर ही अंधेरा हमेशा से था?
ये सवाल किताब बार बार उठाती है। यकीनन उसके साथ जो हुआ वो भयानक था। हिंडले का जुल्म, कैथरीन का धोखा, इसने उसे तोड़ा, लेकिन जिस वहशीपन से वो बदला लेता है वो डरा देता है। ये दिखाता है कि कैसे नफरत का चक्कर चलता रहता है, जुल्म सहने वाला खुद जालिम बन जाता है।
और एडगर लिंटन, वो इस सब के सामने कैसा लगता है?
एडगर सभ्य है, भला है, लेकिन वो हीथक्लिफ और कैथरीन के इस जंगली जुनून की गहराई को कभी समझ ही नहीं पाता। वो जैसे दूसरी दुनिया का प्राणी है।
हीथक्लिफ की वापसी का क्या असर होता है?
बहुत बुरा। वो पहले से ही एडगर से शादी करके खुश नहीं थी, और अब हीथक्लिफ की वापसी और उसके बदले की आग देखकर वो टूट जाती है। वो बीमार पड़ जाती है, उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगता है।
और फिर उनकी वो आखिरी मुलाकात।
हाँ, उसकी मौत से ठीक पहले हीथक्लिफ उससे मिलने आता है। वो मुलाकात उफ बहुत ही तीव्र, कड़वी और दर्द भरी होती है। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का, मगर उस नफ़रत के नीचे भी उनका वो गहरा, अजीब सा प्यार साफ दिखता है।
और फिर कैथरीन की मौत हो जाती है बेटी को जन्म देते हुए।
हाँ, छोटी कैथी के जन्म के कुछ ही घंटों बाद।
हीथक्लिफ का क्या रिएक्शन होता है? वो शायद साहित्य के सबसे यादगार पलों में से।
हाँ, वो पूरी तरह बिखर जाता है, उसका दुख गुस्से में बदल जाता है। वो दीवार से सिर टकराता है और कैथरीन की आत्मा को कोसता है कि वो उसे चैन न लेने दे, हमेशा उसे सताती रहे।
वो चीखता है, कैथरीन अर्नशॉ, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें शांति न मिले,
मेरे साथ हमेशा रहो, कोई भी रूप ले लो, मुझे पागल कर दो, मैं अपने जीवन के बिना नहीं जी सकता, मैं अपनी आत्मा के बिना नहीं जी सकता। ये शब्द उनके जुनूनी विनाशकारी प्यार का सार है।
जैसे वो कहता है, मैंने तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा, तुमने तोड़ा है, और उसे तोड़कर तुमने मेरा तोड़ दिया है। यहाँ वो गॉथिक माहौल भी बहुत बढ़ जाता है ना।
बिल्कुल, भूत, आत्माएं, श्राप।
बिल्कुल। कैथरीन की मौत के बाद कहानी एक लंबा गैप लेती है, लगभग एक दशक से भी ज्यादा।
और अब हीथक्लिफ का बदला किस पर निकलता है?
अगली पीढ़ी पर। वो हिंडले के बेटे हैरिंगटन अर्नशॉ को जानबूझकर अनपढ़ गवार बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे कभी हिंडले ने उसके साथ किया था।
यानी वही नफरत का चक्र वो उसे आगे बढ़ा रहा है।
हाँ।
और उसका अगला निशाना है कैथरीन और एडगर की बेटी कैथी लिंटन, जो अब थ्रशक्रॉस ग्रेंज में एक पढ़ी लिखी जिंदा दिल युवती बन चुकी है।
हीथक्लिफ उसके साथ क्या करता है?
वो एक बहुत ही क्रूर योजना बनाता है। वो चाहता है कि कैथी की शादी उसके अपने बेटे लिंटन हीथक्लिफ से हो जाए।
लिंटन हीथक्लिफ, ये इसाबेला का बेटा है।
हाँ।
जो बहुत बीमार, कमजोर और अपने बाप की तरह ही क्रूर और स्वार्थी है। हीथक्लिफ उसे सिर्फ एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करता है।
और इस शादी से उसे क्या हासिल होगा?
इससे उसे थ्रशक्रॉस ग्रेंज पर कब्जा मिल जाएगा, क्योंकि अगर कैथी लिंटन से शादी कर लेती है और एडगर और लिंटन दोनों मर जाते हैं तो सारी जायदाद हीथक्लिफ की हो जाएगी।
कितनी भयानक साजिश है।
और वो कामयाब भी होता है। वो कैथी और नेली डीन को वुथरिंग हाइट्स में कैद कर लेता है, डरा धमकाकर कैथी को मरते हुए लिंटन से शादी करने पर मजबूर करता है।
और फिर
एडगर भी मर जाता है, उसके कुछ वक्त बाद लिंटन भी। अब हीथक्लिफ वुथरिंग हाइट्स और थ्रशक्रॉस ग्रेंज दोनों का मालिक है। कैथी एक कैदी जैसी है और हैरिटन एक अनपढ़ नौकर। सब कुछ हीथक्लिफ के नियंत्रण में।
ये दूसरी पीढ़ी, कैथी में माँ की आग है, पिता की कोमलता भी। हैरिटन दबाया गया पर अंदर से नेक, और लिंटन
वो तो बस एक दुखद मोहरा।
लेकिन इसी अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखती है कैथी और हैरिटन के बीच।
कैसे?
शुरू में तो कैथी उसे नफरत करती होगी उसके गवारपन की वजह से।
हाँ, बिल्कुल।
वो उसे नीची नजर से देखती है, लेकिन धीरे धीरे वो उसके रूखेपन के पीछे उसकी असलियत, उसकी छिपी हुई अच्छाई, उसके अपमानित स्वाभिमान को देखने लगती है।
और फिर वो कुछ ऐसा करती है जो सब बदल देता है।
वो हैरिटन को पढ़ना सिखाने का फैसला करती है।
अच्छा।
शुरू में थोड़ी हिचक, लड़ाई झगड़ा होता है। हैरिटन पर शर्म भी आती है, गुस्सा भी, लेकिन फिर वो सीखने लगता है। और इस दौरान उनके बीच नफरत की जगह धीरे धीरे सम्मान और फिर एक कोमल गहरा प्यार पनपने लगता है।
ये प्यार पहली पीढ़ी के उस जुनून से कितना अलग है ना?
बिल्कुल अलग। ये धीरज सहानुभूति और समझ पर बना है। ये विनाशकारी नहीं बल्कि उपचार करने वाला है। और यही लगता है कि शायद नफरत का वो भयानक चक्र टूट सकता है।
ये मुक्ति की थीम है, रिडेम्पशन, कि अंधेरे से रोशनी की तरफ जाया जा सकता है।
और कैथी और हैरिटन के इस बढ़ते रिश्ते को देखकर हीथक्लिफ पर भी असर पड़ता है। अजीब सा असर।
क्या मतलब?
वो कैथी में कैथरीन की झलक देखता है और हैरिटन में भी उसे कुछ ऐसा दिखता है, शायद अपनी जवानी की याद या कैथरीन की आंखों की झलक, जो उसे परेशान करती है। जिन लोगों से उसे नफरत करनी चाहिए वो उसे उसके खोए हुए प्यार की याद दिलाते हैं।
तो
उसके बदले की भावना कम होने लगती है।
हाँ।
उसकी वो आग ठंडी पड़ने लगती है। उसका ध्यान अब दुनियावी चीजों से हटकर पूरी तरह कैथरीन की आत्मा पर लग जाता है। वो जैसे उसके साथ एक होने के लिए तड़पने लगता है।
वो खाना पीना छोड़ देता है।
हाँ, घंटों मूर पर भटकता है या कमरे में बंद रहता है जैसे किसी और ही दुनिया में हो। कैथरीन का जुनून उसे अंदर से खा जाता है।
और फिर उसका अंत, वो भी बहुत रहस्यमयी है।
बिल्कुल। एक सुबह नीली उसे कमरे में मरा हुआ पाती है। खिड़की खुली है, बारिश अंदर आ रही है। वो बिस्तर पर है, आंखें खुली हैं और चेहरे पर एक अजीब सी, जैसे जीत की पर खौफनाक मुस्कान है।
इसकी क्या व्याख्या हो सकती है रे? क्या वो आखिरकार कैथरीन से मिल गया? क्या प्रकृति ने उसे वापस ले लिया? या ये सिर्फ उसके जुनून का आखिरी अंजाम था?
ब्रोंटे हमें कोई सीधा जवाब नहीं देती। शायद ये सब कुछ था, लेकिन उसकी मौत के साथ वुदरिंग हाइट्स पर जो अंधेरा छाया था, जो नफरत का माहौल था, वो खत्म हो जाता है।
और कैथी और हैरिटन,
उनके प्यार और आने वाली शादी से दोनों घरों के बीच, वुदरिंग हाइट्स और थ्रशक्रॉस ग्रेंज के बीच, एक नई शुरुआत, एक शांति की उम्मीद बनती है। जो नफरत पहली पीढ़ी ने बोई थी उसे दूसरी पीढ़ी का प्यार मिटा देता है।
कहानी के बिल्कुल आखिर में लॉकवुड फिर वहां से गुजरता है और चर्च यार्ड में कब्रें देखता है, कैथरीन, एडवर, हीथक्लिफ की। और वो सोचता है कि क्या इन अशांत आत्माओं को इस शांत जमीन में भी चैन मिला होगा।
हाँ, तो कुल मिलाकर वुदरिंग हाइट्स हमें प्यार और जुनून की हदें दिखाता है। दिखाता है कि कैसे सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत संघर्ष इंसान को तोड़ सकते हैं और कैसे बदला सिर्फ और बर्बादी लाता है।
प्रकृति बनाम सभ्यता का वो द्वंद्व भी साफ है, और ब्रोंटे का लिखने का तरीका, वो फ्रेम नैरेटिव, लॉकवुड और नेली के जरिए कहानी कहना, समय का आगे पीछे जाना, प्रतीकों का इस्तेमाल, घर, मूर, मौसम, सब कमाल का है।
भाषा में भी एक अजीब सी ताकत है, काव्यात्मकता है, जो उन तीव्र भावनाओं को पाठक तक पहुंचाती है।
ये कहानी हमें सिखाती है कि जुनून जब बेलगाम हो जाए और नफरत से मिल जाए तो कितना विनाशकारी हो सकता है, आत्मा तक को झुलसा सकता है।
लेकिन ये कैथी और हैरिटन के जरिए ये भी दिखाती है कि सहानुभूति, माफी और धीरज से नफरत और दुख के गहरे चक्रों को तोड़ा जा सकता है। अंत में शांति और उपचार संभव है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।